अब यहाँ से हम एक बार फिर ये देख लेंगे कि वह आलमू मातुब्दून व मा कुन्तुम तक्तुमून। अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि मैं जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। इस पे अमूमन लोगों के जहनों में ये सवाल आता है कि आखिर फरिश्तों ने क्या छुपाया था और क्या जाहिर किया था। तो एक बात तो हम कर चुके कि जाहिर तो उन्होंने अंदेशा किया था कि एक इंसान जो मुख्तलिफ चीज़ों से मिल के बना है, उसके खमीर के अंदर ही एक उठान है, तो जब ये दुनिया में आएगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो सकते हैं, कहीं फसाद ना खड़ा हो जाए। और साथ ही साथ उसको लफ्ज़ खलीफा से भी ये शुबा लगा था कि शायद इसकी कोई ख़ास वजह होगी और इंसान की ज़रूरत क्या थी। लेकिन इसी तरह अगर आप देखें तो फरिश्तों के जाहिर करने से ये बात भी पता चलती है कि फरिश्तों के दिल में जो बात आई थी उन्होंने उसका इजहार कर दिया था, दिल में नहीं छुपाया। जबकि बाज़ दफ़ा इंसान कुछ बातें दूसरों के बारे में दिल में रख लेते हैं और वो दिल में रखी हुई बातें इतनी गंदी हो जाती हैं, इतनी सड़ान पैदा होती है कि जिसके नतीजे में फिर इंसान बहुत ही ज़्यादा अपने दिल को गंदा कर लेता है। और छुपाने की जहाँ तक बात है तो छुपाना अल्लाह ताला से तो कोई भी नहीं छुपा सकता कोई, लेकिन अल्लाह ताला ने ये बात कही कि तुम छुपाते हो, तो वो छुपाना अल्लाह के लिए नहीं था। अल्लाह से ना कोई छुपा सकता है और ना कोई छुप सकता है, बल्कि बात यह है कि फरिश्तों ने ये जो बात कही कि इंसान फसाद पैदा करेगा और इंसान की वजह से दुनिया में कोई मसाइल खड़े हो सकते हैं, तो वल्लाहु आलम बेहतर तो यही है कि इसमें हम भी खामोशी रहें। और जैसा कि हमने तذکرہ किया कि आदम और इब्लीस का किस्सा कुरान पाक में कई मुख्तलिफ मुकामात पे आता है, और अल्लाह ताला ने सिर्फ वही किस्से कुरान पाक में पेश किए जो अरबों में थोड़े बहुत मारूफ थे। कुरान पाक किस्सों और कहानियों की किताब नहीं है, लेकिन कोई भी किस्सा और कहानी उस हद तक पेश की गई जिस हद तक उसमें से अमल की बात थी। और ये चंद किस्से अरबों में मारूफ थे, कुछ तो उन्होंने यहूद से सुने हुए थे जो मदीना में रहते थे और अपने दौर के रिलीजियस लोग मशहूर थे, लोग उन्हीं से ही फ़ायदा उठाते थे जब भी कभी उनको ज़रूरत पेश आती थी। तो अल्लाह ताला ने यहाँ कोई किस्से को या कहानी को पूरा करने के लिए नहीं कहा, बल्कि किस लिए कहा कि हम इस बात से अपने लिए नसीहत ले सकें। और फिर यही बात फरिश्तों ने अपनी इस बात में भी कह दी कि अल्लाह ताला आप हिकमत वाले भी हैं और आप जानते भी हैं, आपको सब कुछ पता है कि कौन क्या करता है। अब इसके बाद से अगर आप एक छोटा सा पॉइंट बना लें, आयत नंबर 34, इसका अगर आप टॉपिक लिख लें कि फरिश्तों को झुका दिया। अब यहाँ से आदम अलैहिस्सलाम के इस किस्से का दूसरा रुख शुरू होता है। पहले तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से आदम अलैहिस्सलाम की इल्मी बरतरी साबित करवाई और आदम अलैहिस्सलाम ने उन चीज़ों के नाम बता दिए जो आदम की तो ज़रूरत के थे लेकिन फरिश्तों का उनसे कोई भी ताल्लुक नहीं था। और इससे ये चीज़ भी पता चलती है, ये जो लफ्ज़ पीछे गुजरा कि ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना में, कि अल्लाह ताला ने हर फरिश्ते को बस एक इल्म दिया हुआ है। जैसे मीकाईल को अल्लाह ताला ने बारिश बरसाने का सिर्फ हुक्म दिया हुआ है, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के मैदान में सताए गए और लोगों ने आपको पत्थर मारे, तो उस वक्त वो फरिश्ता हाजिर हुआ और उसने कहा कि मैं मलकुल जिबाल हूँ, मैं पहाड़ों का फरिश्ता हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने पहाड़ों पर मामूर किया है, और अगर आप हुक्म दें तो मैं दो पहाड़ों को आपस में टकरा दूँ। इससे आपको फरिश्तों की ताकत का भी अंदाज़ा होगा कि फरिश्ते कितने पावरफुल होते हैं कि दो पहाड़ों को भी मिला सकते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी ने उस वक़्त इस ऑफ़र को कबूल नहीं किया कि नहीं, शायद इनकी नस्लों में से अल्लाह ताला किसी और को इस दीन पर ले आए। तो इससे क्या पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम को जो इल्म दिया गया था वो कुल्ली था। यहाँ एक छोटी सी चीज़ और ऐड कर लीजिएगा कि अल्लम अल आदम अल अस्माअ कुल्लहा में अल्लाह ताला ने क़यामत तक डिस्कवर होने वाले सारे उलूम आदम की रूह या आदम अलैहिस्सलाम के डीएनए में डाल दिए थे। थोड़ी सी बात शायद जो लोग साइंस स्टूडेंट्स हैं वो समझ सकें कि आज हमारी जिस्म की पूरी मालूमात जो होती हैं वो डीएनए, तीन लफ्ज़ हैं, उसके अंदर सेव होती हैं। चले इसको भी छोड़ दें, अगर कंप्यूटर की ज़ुबान में बात करें तो बात दफ़ा एक छोटी सी हार्ड डिस्क होती है, यानी मसला आप ये देखिए कि ये छोटा सा आपको पुर्जा एक दिखेगा लेकिन इसमें कई घंटे समा सकते हैं ना, कंप्यूटर की कितनी मेमोरी इसमें आ सकती है। इसी तरह हम इंसानों के अंदर हमारे बालों का रंग क्या होगा, हमारा फुलां फुलां ये सब मौजूद है। मुफस्सरीन कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कयामत तक डिस्कवर होने वाले उलूम आदम के डीएनए में या आदम के जिस्म में डाले, अब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से डिस्कवर हो रहे हैं। समझ रहे हैं? मतलब देखिए कि सिंपल बात है कि सबसे पहला जो इल्म निकला था वो आग का था, कि लोगों ने इत्तफाकन एक पत्थर को ऊपर से दूसरे पत्थर पे गिरते देखा, दोनों की रगड़ हुई, उससे चिंगारी निकली, तो उनको एहसास हुआ कि अच्छा, करीब जाके देखा तो हरारत थी। बस वो दिन था कि उसके बाद वो खोज में लग गए और थोड़े ही अरसे के बाद आग डिस्कवर हो गई। इसी तरह आप जानते हैं कि न्यूटन ने दरख्त से सेब गिरता हुआ देखा और उसने ग्रेविटी को डिस्कवर किया। तो इसमें आज जो इल्म अभी नहीं भी आए, मतलब आज कितने इलूम है, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखें तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जोलॉजी और लंबी लंबी लिस्टें हैं। और अभी कयामत तक जितनी डिस्कवरीज होनी है उसका सीड, उसका रूट जो था अल्लाह ताला ने आदम को दे दिया, तभी तो वहाँ से निकल रहे ना, क्योंकि वो मेन सोर्स थे। तो बहरहाल जो चीज़ मेन में होती है फिर उसके बाद आगे भी पेश की जाती है। अब यहाँ से अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम की बरतरी साबित करने के बाद और फरिश्तों में इंसान की एक फजीलत बढ़ाने के बाद अब दूसरी तरफ पेश करते हैं, और वो क्या है, वह इस कुलना, और जब हमने कहा, किसने कहा, अल्लाह ताला ने कहा, लिल मलाइकतिस जुदू, फरिश्तों को के सजदा करो। यहाँ एक सवाल पैदा हो सकता है, और नॉन मुस्लिम्स करते हैं ये सवाल, ख़ास तौर पे जब इस्लाम पे नज़रें लगी होती हैं तो छोटी छोटी चीज़ पे नज़र होती है, और ख़ास तौर पे जो बंदा नक्श चुनने के लिए बैठता है वो तो छोटी छोटी बातों पे गौर करता है। तो बास ने कहा कि अगर मुसलमानों के बकौल जब अल्लाह ताला एक है तो कुल ना हमने कहा क्यों है, हम तो जमा के लिए होता है, वरना तो ये होता था कुल तू, मैंने कहा। ठीक है, तो इसके दो जवाब आप दे सकते हैं। पहला जवाब इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कुरान पाक में जहाँ भी हम का सीगा है अल्लाह ताला के लिए, खुलना, फालना, जालना वगैरह वगैरह, तो इनसे मुराद अल्लाह ताला ने वो काम फरिश्तों के ज़रिए से किया। जैसे कोई मिसाल देनी नहीं चाहिए, अल्लाह ताला के लिए कोई मिसाल नहीं, लेकिन हमारी समझ के लिए है कि अल्लाह ताला अपने काम फरिश्तों के ज़रिए करवाते हैं, जैसे कोई बादशाह अपने काम फोर्सेस के ज़रिए, आर्मी के ज़रिए करवाते हैं, तो फरिश्ते अल्लाह ताला की फोर्सेस हैं। अल्लाह ताला ने इन फोर्सेस के ज़रिए चूँकि कराया इसलिए जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, ये एक तफसीर है। नंबर टू डाल के दूसरी तफसीर लिखेंगे आप कि ये ना जो है हम जो है ये तकरीम का है, इज्जत का है। कभी किसी बादशाह को आप बात करते देखे तो बादशाह अपने लिए क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं हमारा हुक्म। बाज़ दफ़ा हम भी तो अल्लाह ताला को जमा में यही कहते हैं ना कि अल्लाह ताला कहते हैं, कोई कहे ना कि अल्लाह ताला कहता है तो थोड़ा मायूब लगता है। ठीक है, तो दूसरी तफसीर ये है कि ये ना जमा का नहीं है, इससे मुराद अल्लाह के ज़्यादा होने की बात नहीं बल्कि ये अल्लाह ताला के लिए इज्जत और तकरीम की बात है। लिल मलाइकती, फरिश्तों को कहा, कैसे कहा, इसकी तफसीलात आप आगे जाके सूरत सवाफात है गालिबन उसमें पढ़ेंगे कि जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कोई हुक्म देना होता है तो एकदम जंजीरों के चलने की आवाज़ आती है, जैसे जंजीरें घिसटती हैं ना, इस तरह की आवाज़ आती है, और उसकी दहशत से फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं। ये पढ़ेंगे आप गैब के मामलों में, लेकिन जब बुनाइतों के साथ पढ़ते हैं तो वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि फरिश्ते इतने खौफजदा हो जाते हैं अल्लाह की बात सुनते हुए कि उनको होश नहीं आता। फिर जब उनके दिलों से खौफ ख़त्म हो जाता है तो फिर वो पूछते हैं कि अल्लाह ताला ने क्या कहा। आज हम भी तो अल्लाह ही की बात पढ़ते हैं, क्या कुरान पाक के लफ्ज़ सुनते हुए हमारे दिल में ये ख्याल आता है ये अल्लाह का कलाम है? क्या इस वक्त हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारी सोचें हर चीज़ से बेनियाज होती हैं? कुरान पाक से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन इसको पढ़ते हुए दिल के अंदर खशियत और खौफ का होना लाजिम है, वरना याद रखिए कि ये भी फिर सिर्फ किस्सों कहानियों की किताब रह जाती है। और लोग कहते हैं कि हमें तो सारी बातें पता है, अब हम और क्या सुने और अब हम क्या सीखें, लिहाजा दिल में खशियत लाजमी है। क्या कहा, उस जुदू, सजदे में गिर जाओ। अब उस जुदू का लफ्ज़ हम पीछे देख चुके, सजदा ज़ाहरी सजदा भी होता है और दूसरी तरफ सजदे का मुराद झुकना भी है। यहाँ जो माने से लग रहा है वो लिटरल सजदा है, यानी प्रोस्ट्रेट के मानों में कि तुम आदम अलैहि सलाम के आगे झुक जाओ। अब कैसे था वो सजदा? ना उसकी ज़रूरत थी ना अल्लाह ने बताया कि क्या वो हमारी तरह था, हाथों को नीचे रखना, नाक को लगाना, माथे को लगाना। वल्लाहु आलम, बस अल्लाह का हुक्म था। किसको करो? ली आदम, आदम को करो। एकदम कान खड़े होने लगते हैं कि ओहो, आदम को सजदा हो रहा है, ये तो भाई शिर्क हो गया। तो बात सुनिए कि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आज अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया कि जब तुम नमाज पढ़ो तो क़िबले को सजदा करो, खाना काबा की तरफ मुंह करके जो नमाज पढ़ने का हुक्म है, आदम की जगह वो लगा दे। होता सजदा अल्लाह के लिए है, लेकिन डायरेक्शन तय करने के लिए हम उस तरफ मुंह कर लेते हैं। उस वक्त भी हमारी नीयत ये नहीं होनी चाहिए कि हम खाना काबा को सजदा कर रहे हैं। नीयत क्या होनी चाहिए? कि हम अल्लाह के हुक्म से इस तरफ सजदा कर रहे हैं। खुदा न खास्ता खाना काबा यहाँ से उठा भी लिया जाए तो भी मुसलमान उसी डायरेक्शन में सजदा करेंगे। ठीक है, तो शिर्क का जो शुबा था पहला तो दूर हो गया। लोगों ने कहा कि जो आदम को सजदे का हुक्म है तो फिर आज हम भी कब्रों वालों को सजदा कर लें और पीरों को कर लें। तो पहली बात है कि असल हुक्म उस हस्ती को नहीं होता, अल्लाह के हुक्म को होता है। जिस अल्लाह ने फरिश्तों को कहा कि तुम आदम को सजदा करो, उसी ज़ात ने हमें मना कर दिया कि आदमियों को या इंसानों को सजदा नहीं करो। और इसकी दलाइल मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मखलूक में से किसी के आगे झुकना या सजदा करना इसकी इजाज़त होती तो मैं औरतों को कहता कि अपने शौहरों के आगे सजदा करो। बस बात इतनी है, लेकिन इसकी इजाज़त नहीं। बाज़ लोगों ने इसको अपनी ज़ुबान में शौहर को मजाजी खुदा कहना शुरू कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत बात है। कोई मजाजी खुदा नहीं होता। सिर्फ बात बताई कि शौहर के हक कितने हैं। चूंकि औरतों के मिजाज में अमूमन नाशुक्री होती है, तो कहा कि वो मर्द जिसके बलबूते पे तुम इतना राज करती हो, फिर उसके सामने तुम बड़ा क्यों बनो? अगर सजदे का हुक्म होता तो तुम्हें कहा जाता, लेकिन नहीं है। और बहुत सारी इस पे दलाइल मौजूद हैं, आगे आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरत कहफ में जब हम पहुँचेंगे अल्लाह की तौफीक से, तो वहाँ इस पे ज़रा डिटेल से भी बात हो जाएगी कि क्या हुक्म है इस्लाम का कि जब कोई फौत हो जाए तो उनकी कब्रों को सजदागाह बनाना और वहाँ जाके क्या मामलात करना, इसको वहाँ देखेंगे। बस ये अल्लाह का हुक्म था। आदम एक जहद थे, जैसे आज खाना काबा है। दूसरा इसका मानी उस जुदूली आदम का ये भी लिया जाता है कि आदम के लिए मती हो जाओ। क्यों? पीछे हम पढ़ चुके कि अल्लाह ने दुनिया इंसान के लिए बनाई। इंसान की हैसियत इस दुनिया में एक हाकिम की है, एक बादशाह की है। अब एक इंसान अकेला तो सारे काम नहीं करेगा ना, उस काम के लिए फरिश्तों की मदद की ज़रूरत थी। तो गोया के यहाँ फरिश्तों को कहा गया कि देखो, अब तुमने आदम के फ़ायदे के काम करने हैं, बारिशें बरसानी हैं, फसलें उगानी हैं, हवाओं को चिलाना है, वगैरह वगैरह। तो गोया के मातहती में देने का एक तसव्वुर भी मिलता है इधर से कि अपनी मर्ज़ी मत करना, आज के बाद आदम के फ़ायदे के काम करना। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जैसे घर का कोई सरबराह है, कहीं जा रहा हो, पीछे से अपने बच्चों में से किसी एक बच्चे को बड़ा बनाए और अपने घर की मेड्स या फुलां फुलां जो भी खिदमतगार है उनको कहे कि देखो, अब मैं तो जा रही हूँ, मेरे बाद अब तुमने इसकी बात माननी है, जो ये कहेगी वो करना है। तो नॉमिनेशन का एक मानी है, यानी असाइन करने के मानों में। ठीक है, अब हुआ क्या? कोई सवाल दिखा बीच में? नहीं। फसजदू, पर सजदा कर लिया। ना पूछा वाए, क्यों, कब तक, वजह, कमज़ोरी, दिस दैट, नहीं। फसजदू क्यों? क्योंकि फरिश्तों की आदत ही क्या है कि ला यासूना, वो नाफरमानी नहीं करते, और जो काम करने का उनको हुक्म दिया जाता है वो फौरन कर लेते हैं। फरिश्तों के खमीर में, खमीर कहते हैं यानी उनकी असल में, उनके मिजाज में नो कहना नहीं है, अल्लाह ने डाला ही नहीं। ये ऐसी है जैसे आपकी मशीन, आप मशीन के अंदर कोई चीज़ डालें, जो ही बिजली का स्विच ऑन करेंगे मशीन चल पड़ेगी। वो आपसे नहीं पूछेगी कि आपने इसमें दूध डाल के ब्लेंड कर रहे हैं या इसमें लस्सी डाल रहे हैं या आप इसमें फ्रूट डाल रहे हैं। बहुत होगा आपने गलत चीज़ डाली होगी तो मशीन ख़राब हो जाएगी, मशीन नहीं पूछेगी आपसे। बस वो आपके बटन दबाने की देर है चलने लगेगी। फरिश्तों के अंदर भी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं। हाँ, जो शुरू में अंदेशा था वो बात हम कर चुके कि उस वक़्त कोई इनकार मुराद नहीं था, बल्कि हिकमत मालूम करने की बात थी। हम एक दफ़ा लिटरली कर लेते हैं, फिर कुछ चीज़ें इन आयतों में जो रहेंगी वो बाद में हम करेंगे। सजदा कर लिया, फसजदू, सब ने कर लिया, जमा का लफ्ज़ है, ये सब ने किया। इल्ला इबलीस, मगर इबलीस ने ना किया। ये कहाँ से आ गया? अभी तक तो जितनी कहानी थी उसमें करेक्टर्स क्या थे? एक अल्लाह सुबहाना तआला की ज़ात थी, दूसरे आदम थे और तीसरे फरिश्ते थे। यहाँ से अब तीसरी मखलूक का तذکرہ, इबलीस। इबलीस ने इनकार किया। ये कौन था? इसके बारे में सूरत अलकहफ में आप पढ़ेंगे, कान मिनल जिन, वो जिन्नों में से था। और बाकी जगहों को सबको मिला के जब हम बात करें तो इबलीस बुनियादी तौर पे कौन था? इसके बारे में आता है कि इबलीस ताउसुल मलाइका के नाम से मारूफ था। ताउसुल मलाइका यानी था असल में जिन, शैतान कह लें या जिन था, लेकिन कसरते इबादत की वजह से फरिश्तों में उठने बैठने लग गया। लो कैलिपर का शख्स था, लेकिन हाई सोसाइटी में बैठने लगा, और जूं ही मौका आया अपनी असल खोल गया। कभी ऐसा होता है? कुछ लोग ऊपर ऊपर से रोब डालने के लिए बहुत पढ़े लिखे बन रहे होते हैं और ऐसी जगहों में जाके बैठने शुरू हो जाते हैं। तबीयत के अंदर कोई ऐसा गंवारपन होता है कि जो निकला नहीं, जूं ही अपने खौल से निकलेंगे ना उसी में आ जाएंगे। वो महफिल ख़त्म होगी उसके बाद उसी टोन में बात करने लग जाएंगे जैसे पहले करते थे, वगैरह वगैरह। इसने चूँकि इबादत कसरत से की, इसका तज़किरा फरिश्तों में होने लगा। रिवायात में इसका नाम इज़ाज़ील आता है, आइन ज़ा अलिफ ज़ा हमज़ा या लाम, जैसे इज़राइल होता है ना, तो रॉ को भी ज़ा बना दें, इज़ाज़ील नाम आता है। जब फरिश्तों को हुक्म हुआ, अब सवाल पैदा होता है, बास कहते हैं कि ये हुक्म तो सिर्फ फरिश्तों को था, तो फिर आदम इबलीस ने क्यों किया? पहली बात, इसकी भी दलील आप आगे जाके कुरान पाक में पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने शैतान से पूछा है कि तूने सजदा क्यों नहीं किया जबकि मैंने तुझके हुक्म दिया। इस अमर तुक्सर बनी इसराइल में आएगा ये इंशाअल्लाह ताला, ठीक है? तो बास कहते हैं कि उसको भी हुक्म दिया था। दूसरी इसकी राय या दूसरी तफसीर क्या है कि फरिश्ते तो सिम्बलाइज थे इस वक्त, फरिश्तों को एक निशानी के तौर पे यहाँ पेश किया गया है। हकीकत में कायनात की हर चीज़ को आदम के आगे झुकने का हुक्म था, मुसख़र का मानी है ना। तो चूँकि फरिश्तों को था तो आदम को तो उसमें इबलीस को खुद ही आ गया, ठीक है? अब हुआ क्या कि शैतान जो के बड़ा तो बना हुआ था लेकिन मिजाज में आग थी। आग गुस्से को भी कहते हैं। आज भी यही आग इंसान को अल्लाह के हुक्मों से दूर रखने का सबब बनती है। लिहाजा हुआ क्या कि जब सजदा किया गया तो इबलीस ने ना किया, अबा इनकार किया, सख्ती से इनकार किया। पीछे लफ्ज़ों में हम देख चुके हैं ना, शिद्दत से, वस्तकबरा और तकबर किया, बड़ा बनना चाहा। एक लफ्ज़ अबा से भी बात समझ में आ गई, लेकिन आगे तकबर की बात करके असल वजह इनकार की बता दी कि इनकार किया गया। क्यों? उसने कहा कि मुझे क्यों कहा, वकान मिनल काफिरीन, और था ही वो काफिरों में से। इसका एक ये मतलब बनता है, काना का जो लफ्ज़ है ना अरबी में, है के लिए भी आता है और था के लिए भी आता है। इंग्लिश में सुन रहे हैं तो इसके लिए भी आता है और वॉज़ के लिए भी आता है। पीछे इसकी कुछ शर्तें होती हैं, लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो दो तरह से इसका तर्जमा किया जाता है। और था ही वो काफिरों में से, इशारा है उसके माजी की तरफ कि उसका तो मिजाज ही कुफर वाला था, ये तो बस चंद बड़े लोगों में और पढ़े लिखे दीनदारों में बैठने लग गया था, एक बात हुई। और दूसरा इसका मतलब है कि नहीं, था तो अच्छा, यानी इबादत की हुई थी, कसरत थी, लेकिन हो गया इस हुक्म से काफिर। क्या पता चला? एक सजदे का इनकार इबलीस को काफिर बना गया। ज़रा सोचिए, इबलीस का जुर्म क्या था इधर? क्या वो अल्लाह को नहीं मानता था? मानता था, बार बार कह रहा है रब्बी, आगे आप पढ़ेंगे कहेगा कि मुझे ढील दे और मोहलत दे। रब को मानता था, अल्लाह को भी मानता था, इबादत भी करता था, बल्कि बाज़ रिवायतों में तो यहाँ तक आता है कि ज़मीन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं, यानी जो भी वहाँ उस वक़्त का दौर था, कि हर जगह इसके सजदों के निशान थे। लेकिन इसका जुर्म क्या था कि अल्लाह को तो माना लेकिन अल्लाह के हुक्म को नहीं माना, रब को माना लेकिन रब की नहीं मानी। आज ये कुफर हो रहा, आज के दौर का कुफर है, क्योंकि देखिए काफिर का लफ्ज़ आ गया। अमूमन जहाँ लफ्ज़ काफिर आता है, डिसबिलीवर आता है, फौरन हम कहते हैं ये तो वो लोग हैं जो मानते ही नहीं अल्लाह को। नहीं, जिस तरह एक इंसान अल्लाह की ज़ात को ना मान के काफिर हो जाता है, इसी तरह वो अल्लाह के हुक्म को ना मान के भी काफिर हो जाता है। इसको कुफ्रुल अमल कहते हैं। तो लिहाजा ये काफिर हो गया, पीछे पड़ गया, नाफरमान था। एक सजदे का इनकार इब्लीस को जन्नत से निकलवा गया। ज़रा सोचिए, हम भी अपने सजदों पे गौर कर लें। सिर्फ एक सजदा था, और था भी आदम को, था अल्लाह का हुक्म। और जब इंसानों में से इंसान कई सजदे ज़ाया कर दे जो हों भी अल्लाह की ज़ात को, तो क्या फिर उसी जन्नत में जाएंगे? इससे पता क्या चला कि बाज़ दफ़ा एक नो इंसान की पिछली सारी हाँ को ज़ाया कर देती है। आप 10 घंटे लगा के लिखते जाएं, 20-25 सफ़े लिख लें कंप्यूटर पे, और एक गलती से चाहे डिलीट का बटन दबा दें, आपकी सारी फाइल डिलीट हो जाएगी। बस आप कैसेट चलाते हैं, रिकॉर्ड करें, और गलती से आप वहाँ खाली बटन दबा दें और उस पर कुछ प्ले ना करें, तो सारी वॉश हो जाती है। अल्लाह के यहाँ भी इंसान की नेकियाँ इसी तरह डिलीट हो जाती हैं, वॉश हो जाती हैं। तो लिहाजा यहाँ पे ये बात पूरी हुई कि असल खुल गई। हर बंदा अपनी असल दिखा जाता है। यहाँ बिल्कुल वही कहानी आ गई कि जो हमारे सामने आई। अब ज़रा हम इस आयत में से कुछ चीज़ों को मज़ीद देखेंगे। यहाँ तक बात वाज़ है, बिल्कुल सिंपल है ना? आयत के साथ साथ रहे आप रहे, सिर्फ मुझे फिक्र उन लोगों का जो लिखते नहीं हैं, देख रहे होते हैं बस। मुझे नहीं समझ आता कि आपकी मेमोरी इतनी शार्प है कि आप बाद में सिर्फ हाफ़ज़े से अपने असाइनमेंट्स करेंगे। गलत लिखें, सही लिखें, फिर ऐसे सबको खुद ही आदत होने लगेगी, ठीक है? वरना फिर बाद में आपको बहुत ही मुश्किल होगी और आप सोचेंगे टू मच है। अब आप देखिए कि इस एक आयत के अंदर जो कुछ बातें हमारे लिए मज़ीद थोड़ी सी समझ आने के काबिल हैं, वो क्या है? सूरत हिजर आयत 29 में और सूरत स्वाद आयत नंबर 72 में आता है, फ़ाइज़ा सवैतुहू व नफ़ख़्तुहू फ़ीही मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। फिर जब मैं आदम की तख्लीक पूरी कर लूँ और इसमें अपनी रूह फूंक दूँ, तब गिर पड़ना इसके सामने सजदे में। मलाइका को सजदे का हुक्म क्यों दिया? क्या इसकी ज़रूरत थी? नहीं। देखिए, सजदे दो तरह के होते हैं। एक होता है ताअब्बुदी सजदा, इबादत का सजदा, जैसे हम नमाज में करते हैं ना, ये हर दौर में अल्लाह ही के लिए रहा। इबादत की नियत से सजदा करना सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। दूसरा होता है ताज़ीमी सजदा, ताज़ीम कहते हैं इज्जत को। पहले दौर में जायज़ था, अब जायज़ नहीं है। आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरह यूसुफ में, हज़रत यूसुफ के भाइयों और उनके माँ बाप ने उनको सजदा किया था। पहले दौर में ये जायज़ था, जैसे बहुत सारी बातें पहली शरीयतों में जायज़ थीं, अब जायज़ नहीं रहीं। तो ये जो था, ये ताज़ीमी सजदा था, अजमत देने के लिए या इज्जत देने के लिए था। दूसरा एक सवाल उठता है कि सजदे की हिकमत क्या थी, कुछ और क्यों नहीं कह दिया? तो याद रखिए कि सजदे की हिकमत आजजी सिखाना थी, सरेंडर करने के लिए, या मुसख़र करना था फरिश्तों को आदम के लिए कि आज जैसे यहाँ ज़ाहरी तौर पे झुके हो तो कल इसके ताबे हो जाना, क्योंकि खिलाफत की बात है ना। और जो खलीफा होता है, जब लोग उसकी बात ही ना माने तो वो अपना काम कैसे करेंगे, ठीक है? तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मुवाफ़क़त सिखाई थी कि कल वही काम करना जिससे आदम अलैहिस्सलाम को फ़ायदा हो। और सूरत अल-कहफ की आयत 50 है, अब रेफरेंस आप नोट कर सकते हैं, कान मिनल जिन्नी फ़फ़सक़ान अम्री रब्बिही, वो जिन्नों में से था, पस उसने सरकशी की अपने रब के हुक्म से, ठीक है? तो गोया के वो था ही जिन्नों में से। और फरिश्तों की खूबी कि वो अल्लाह की बात को मानते हैं, इनकार नहीं करते, ये सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 में आता है। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, वो अल्लाह के किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करते, जो हुक्म भी इनको दिया जाता है इसको बजा लाते हैं। ठीक है, और कुरान पाक में तरतीब के एतबार से ये किस्सा आखिर में है, लेकिन नज़ूल के एतबार से ये आखिरी था। फिर इसके बाद आप देखिए कि शैतान ने जो ढील मांगी थी वो क्यों मांगी थी, इला यौम युबअसून, दोबारा उठाए जाने के दिन तक, यानी दूसरे सूर तक ये ढील में है। फिर यहाँ अबा वस्तकबरा की बात है ना, तो सूरत अल आराफ की आयत नंबर 12 12 और सूरत स्वाद की आयत नंबर 76 76 इन दोनों में आता है इसकी वजह, वस्तकबरा की वजह क्या थी, इसका वो जुमला अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ। देखिए अना क्या है ना, ईगो, ईगो का शिकार हो गया था। वजह क्या देता है, खलकतनी मिन नारिम व खलकतहू मिन तीन, मुझे तूने आग से पैदा किया और इसको मिट्टी से पैदा किया, गारे से पैदा किया। ठीक है, फिर एक और बात इस हिस्से से जो हमारे सामने आती है वो क्या है कि इंसान का फरिश्तों से अफजल होना, ये बात हर दौर में बहुत ही लोगों की बहसों का हिस्सा रही कि क्या इंसान बेहतर है या फरिश्ते बेहतर हैं। बास ने कहा कि मेराज के मौके पे चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस मुकाम पे भी ले जाया गया जहाँ पे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं गए, तो लिहाजा फरिश्ते जो हैं वो कम दर्जे के हैं और इंसान आला दर्जे के। कुछ कहते हैं नहीं, फरिश्ते गुनाह नहीं करते इसलिए वो आला है। तो देखिए यहाँ इस आयतों से पता चल रहा है कि इंसान तीन मखलूक आते हैं, अगर आप थोड़ा सा इसको अपने जहन पे जोर दें, फरिश्ते गुनाह नहीं करते, कुछ उनमें विल पावर नहीं है, इंसान नेकी भी कर सकता है और बुराई भी करता है, शयातीन या जिन्नात कह लें वो बुरे ही काम करते हैं, इंसान फरिश्तों से बेहतर हो सकता है अगर अच्छे काम करें, और इंसान फरिश्तों से कमतर हो सकता है अगर वो शैतानी काम करे। अपनी असल के एतबार से इंसान मिट्टी का एक पुतला है, अच्छे काम करेगा तो फरिश्तों से बेहतर हो जाएगा, बुरे काम करेगा तो फरिश्तों से क्या बाकियों से भी नीचे जाएगा। इसका तذکرہ आप सूरत 3 है गालिबन कि लक़द खलकना लिंसान फ़ी अहसनी तकवीम थुम रददनाहु अस्फल साफिलीन, हमने इंसान को बेहतरीन तकरीम में पैदा किया था लेकिन वो उसके बाद नीचों से निचला हो गया। ठीक है, और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों के जो सजदे की बात जो हुई थी वो आयत नंबर 100 है सूरत यूसुफ़ी की, खर्रू लहू सुज्जदा, और गिर पड़े उसके लिए सजदा करते हुए। ठीक है, तो आज के दौर में सजदे की जगह सलाम, मुसाफ़हा यानी हाथ मिलाना, शेक हैंड, और मुआनिका जो गले मिलते हैं, हक देना जिसको कहते हैं, इसकी तो इजाज़त है लेकिन बाकी चीज़ें उसकी इजाज़त अब नहीं रही। एक छोटा सा अमल जो लोगों का देखा गया वो क्या है कि बड़ों को देखकर सीने पे हाथ रख के इस तरह झुकते हैं कि जैसे कि रुकू में जाने की कैफियत है, इसकी भी इजाज़त नहीं है इस्लाम में, क्योंकि रुकू और सजदा नमाज का हिस्सा है, और एक जगह कुरान पाक में रुकू बोल के पूरी नमाज मुराद लिया गया, सजदा बोल के भी नमाज लिया गया, तो हर वो चीज़ जिससे शक शुबा पड़े उसकी इजाज़त इस्लाम में नहीं है। तो लिहाजा बस दफ़ा ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को हम समझते नहीं लेकिन आदतन कर देते हैं, लेकिन इल्म हासिल करने के बाद ज़रूर हमारे अमल में फ़र्क आना चाहिए। फिर उसके बाद आप देखिए कि ये जो सजदे की बात है, अब एक और इस पे सवाल उठा के उसका ही जवाब दूंगी कि ठीक है इंसान को तो सजदा नहीं कर सकते, तो किसी इंसान की तस्वीर को सामने लगाकर फिर उसके आगे सर झुका लेना या उसके लिए सजदे में जाना, इसका क्या हुक्म है? तस्वीर साजी कह लें या मुजस्मा साजी कह लें, तो इसका भी वही हुक्म है। जिस तरह किसी जिंदा या मुर्दा इंसान के आगे नहीं झुका जा सकता, इसी तरह उसकी छवि या उसकी तस्वीर के आगे भी नहीं झुका जा सकता। और इस्लाम जो मुजस्मा साजी को और तस्वीर साजी को नापसंद करता है, उसकी बड़ी वजह भी यही है कि उसी से शिर्क फैला। इंशाल्लाह आगे जहाँ मौका आएगा आपको तफसील पता चलेगी कि दुनिया में शिर्क पैदा होने की वजह तस्वीर साजी थी, इसी वजह से इसको मना किया गया। फिर इसी इस वजह से एक और रिवायत है सही मुस्लिम की, अल्लाह के नबी ने आकाओं से ये फरमाया कि अपने गुलाम को अब्द ना कहा करो। जैसे गुलाम है तो कोई इसको कि ये मेरा बंदा है, ये ना कहो। क्यों? इसलिए कि हम बंदे रब के हैं। अब्द का लफ्ज़ है ना, ये सिर्फ अल्लाह के लिए आता है। मैंने ये बात क्यों छेड़ी अब्द कहने की, कि बास कल्चर ऐसे हैं, खास तौर पे पंजाबी कल्चर में शोहर को बंदा कहते हैं। सुना भाई, आपका बंदा, किसका बंदा है? वैसे औरतें चाहती तो यही है कि शोहर बंदा ही हमारे बन जाए। हाँ, तो आज के बाद नहीं कहना, कोई किसी का बंदा नहीं, अल्लाह ही के बंदे। ठीक है, गुलामी अल्लाह के लिए है, ना उसके रसूल के लिए, ना दूसरे इंसानों के लिए। तो ये टॉपिक इधर पूरा हुआ। फिर इसके बाद आप देखिए कि कुछ और चीज़ें भी इसके साथ साथ आती जाएंगी, लेकिन दो हिस्से आप आदम अलैहिस्सलाम की कहानी के पढ़ चुके, यहाँ तिलावत सुनेंगे।
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ